हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 11-20। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाण ममालम् प्रेम कुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 12 जिसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि, जिसमें मैत्रेय मुनि ने बताया कि अब तक तो तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य स्वरूप की महिमा को बताया, अब मैं तुम्हें वैदिक ज्ञान के आकार जो ब्रह्मा जी हैं उनकी सृष्टि के बारे में सुनाता हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मृत्यु का भाव, हताश के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोह, शारीरिक धारणा तथा अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसे अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। ऐसी भ्रामिक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी ने अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं किया, अतः उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को पवित्र किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की और उस शुरुआत में सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार महान मुनियों को उत्पन्न किया जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार हैं। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्च स्तर पर थे। और पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की और पुत्रों के द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने जाहिर तो नहीं किया, लेकिन यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भावों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विदाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बताइए। तो कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा कि हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। तो यहाँ तक उनको नाम दे दिया कि आपका नाम तो रुद्र है, लेकिन उन्होंने एक और भी चीज पूछी थी कि मुझे रहना कहाँ है, स्थान। तो अब ब्रह्मा जी रुद्र अर्थात क्रोध, जो साक्षात क्रोध का प्रतीक है, उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे ना, तो उनको कहाँ कहाँ स्थान मिला है और क्रोध का हमारे जीवन में क्या कारण है और क्रोध के होने से हमारे जीवन में क्या क्या हानि होती है, उसके विषय में अभी यहाँ पर हम बहुत सी सुंदर चर्चा सुनने वाले हैं। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ये ब्रह्मा जी शिव जी को कह रहे हैं, रिदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर् जलम मही सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानं यग्र ग्रीकृतानि ते रिदिन्द्रियाण्यसुर्योम वायुरग्निर् जलम मही सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। रिदि अर्थात हृदय, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया, इंद्रिया कौन सी, आंख कान नाक त्वचा रसना, जो हमारी ज्ञान इंद्रिया है। उस असु अर्थात प्राणवायु, व्योम अर्थात आकाश, वायुर अग्निर जलम मही, वायु मतलब हवा, अग्नि मतलब आग, जलम मतलब जल, मही मना पृथ्वी यानी पांच महाभूत। सूर्य चंद्र तपश्चैव, सूर्य अर्थात सूरज, चंद्र अर्थात चंद्रमा, तपस्य यानी तपस्या च एव निश्चय ही स्थानान्यग्रे कृतानि च, स्थानी ये सारे स्थान, अग्रे इसके पहले के, कृतानि पहले किए गए ते तुम्हारे लिए, यानी ब्रह्मा जी रुद्र जी को यानी शिव जी को बता रहे हैं कि आपके लिए स्थान तो मैंने पहले से चुन के रख दिया, आपको किधर किधर रहना है। अनुवाद देखिए, हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से ही निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं, हृदय, इंद्रिया, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। और शिला प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि इन सब स्थानों में क्रोध कैसे और कहां कहां व्याप्त है। शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा के क्रोध से के फलस्वरूप उनकी भावों के बीच से रुद्र का जन्म, जो कि कुछ कुछ तमोगुण तथा रजोगुण से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीमद् भगवद गीता 3.37 में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि रुद्र यानी क्रोध जो है वो किस तरह से जीव के अंदर आता है। भगवान कहते, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, क्रोध काम से उत्पन्न होता है। क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? ध्यायति इंद्रियं, ध्यायते विषयन पुंस संगस्तेषु पजायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो पजायते। जब काम हो जाता है यानी हृदय के अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो इच्छाएं क्योंकि पूरी होती नहीं है किसी की भी, चाहे वो बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, इसलिए इच्छा जिसके मन में आती है उसके उपरांत क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे क्रोध काम से उत्पन्न होता है जो रजोगुण का प्रतिफल है। भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। जब काम तथा लालसा अतुष्ट रह जाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है जो बद्धजीव का भीषण शत्रु है। भगवान कहते हैं विद्य येनम यह वैरिणम, यानी सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्या है? काम है। क्योंकि काम जब हृदय के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है तभी तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस अति पाप में तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार, यानी अपने को सर्व सर्वा सोचने का, की मिथ्या अहमवादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। अब क्रोध क्यों होता है? क्योंकि हम कोई इच्छा करते हैं। हम इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि अब अहंकार होता है कि मैं ये हूं तो ऐसा होना चाहिए। मतलब इच्छा किसकी होती है? धन की, लाभ की, यश की। वो सिर्फ इस शरीर से रिलेटेड अपने आप को समझते हैं ना, तभी इन वस्तुओं में आसक्ति होती है। तो ये बहुत बड़ा ना हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने अस्तित्व को नहीं समझ सकते और अहंकार करते हैं अपने इस शरीर के कारण। तो सोच अहंकार के कारण हम लोग ये सोचते हैं कि हमको, हम ये हैं तो हमें ये मिलना चाहिए। तो मिथ्या अहमवादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीव जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को भगवत गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया है। श्री भगवत गीता में साफ साफ बताया जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वही अहंकार करते हैं कि मैं ये हूं, और जो बुद्धिमान होते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान होते हैं भगवान कहते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। लेकिन जो बुद्धि जिनके अंदर नहीं होती है तो भगवान उनके लिए कहते हैं नमाम दुष्कृति नव मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वो मेरी शरण में नहीं आते बल्कि अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो अहंकार है हमारे हृदय में, ये अहंकार बद्ध जीव जो कि पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को भगवत गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया। यह अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है जहां क्रोध उत्पन्न होता है। हृदय के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और ये रुद्र का रूप है जो अहंकार है कि अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, उसी से ये सारा झंझट हो रहा है। और आगे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यह क्रोध हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों यथा आंखों, हाथों, पांवों तथा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हृदय में तो सबसे पहले मैं कुछ हूं उसका अहंकार आता, फिर वस्तु के प्रति आसक्ति के कारण उसको प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है, और कामना उत्पन्न होती है और वो तो संतुष्ट होने वाली नहीं है। लालसा एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तो हमारी इच्छा तो पूरी होगी नहीं। फिर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, हृदय के अंदर ही सबसे पहले उत्पन्न होता है। और फिर दिखता कहाँ से है? आंखों से दिखता है, आंखें लाल लाल हो जाती है। फिर हाथों से दिखता है, हाथों से हम पटकते हैं, अगर खुद किसी को मार नहीं सकते तो फिर उसको मुट्ठी बंद करके पटकने लगते हैं। पांव के द्वारा हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। जब मनुष्य क्रुद्ध हो जाता है तो वह ऐसे क्रोध को लाल लाल आंखों से और कभी कभी मुट्ठी बांधकर या पैर पटक कर प्रदर्शित करता है। रुद्र तत्व का यह प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। तो ये सारे क्योंकि यहाँ पर बताया गया रुद्र को कहाँ पर रहने के लिए बोला गया, रिदिंद्रियाण्यसर सुर व्योम, रिदिर इंद्रियाण, रिदि माना हृदय, इंद्रियां मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, और व्योम का मतलब होता है आकाश, असु का मतलब होता है प्राणवायु। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी उसके बारे में बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध होता है तो वह तेजी से सांस लेता है, है ना, सांस भी बहुत फास्ट हो जाती है, तो वो प्राणवायु है। इस तरह प्राणवायु द्वारा श्वास लेने की क्रिया द्वारा रुद्र का प्रतिनिधित्व होता है। और जब आकाश में घने बादल घिरे रहते हैं वे क्रोध में गरजते हैं, और जब वायु प्रचंड रूप से बहती है तो रुद्र तत्व प्रकट होता है। फिर आकाश में दिखने लगता है, वायु बहुत तेजी से बहने लगती है, और इसी तरह जब सागर का जल वायु द्वारा क्रुद्ध किया जाता है, वायु के द्वारा सागर के जल को क्रोधित किया जाता है, तो वह रुद्र की विषाद रूप जैसा प्रतीत होता है, और वहां सागर के अंदर या समुद्र के अंदर तूफान आने लगता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए अतीव भयावह है। तूफान में बहुत सारे बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं और नाव सब डूब जाती है, और तूफान आता है, कभी सुनामी आ जाती है, बहुत सारे शहरों को ले डूबते हैं, ये सब रुद्र का ही एक स्वरूप है। तो वह रुद्र के विषाद रूप जैसा प्रतीत होता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए अतीव भयावह है। अब दूसरी स्थान कहाँ बताई गई कि अग्नि, वायुरग्निर जलम मही, अग्नि धधकती होती है, जब आग धधकती होती है तब भी हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती है तो हम यह समझ सकते हैं कि यह भी रुद्र का ही स्वरूप है। तो ये जो जो जगह पे ब्रह्मा जी ने उनको स्थान दिया है वहां पर हम साक्षात रुद्र का दर्शन कर सकते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ प्राणी होते हैं जो हमेशा क्रोध में होते हैं, कौन कौन से, जैसे सांप है, कितना भी दूध पिलाओ तो उसको इच्छा यही होती है कि सामने वाले को ढंसा जाए। बाघ होता है, चीता होता है, चीर फाड़ देता है। सिंह जो किसी को भी है ना कच्चा चबा जाता है, तो सदा ही रुद्र के स्वरूप है। कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लगती है, और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के रूप कारण हृदय गति रुकने की घटनाएं होती है। कभी कभी सूर्य के तेज होने से भी है ना लू लग जाती है, जीवन जीना कठिन हो जाता है, और कभी चंद्रमा इतना शीतल हो जाता है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हृदय गति रुकने लगती है, जो धड़कन है ना वो रुकने लगती है। ऐसे अनेक मुनि हैं जो तपस्या द्वारा शक्ति आविष्ट होते हैं, और उनके योगी दार्शनिक तथा त्यागी हैं, जो क्रोध तथा काम के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी ऊर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखो बताया, सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव, सूर्य के अंदर भी रुद्र का निवास है, चंद्र के अंदर, और तपस्या के अंदर। तपस्या के अंदर क्या, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई कोई योगी इतनी तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करने के बाद उनके अंदर शक्ति आ जाती है ना, तो वो हर जगह अपनी तपस्या के प्रभाव के कारण उस योगिक शक्ति यानी अपनी तपस्या की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और फिर हर किसी को श्राप दे देते हैं। जैसे अनेक योगी दार्शनिक तथा त्यागी हैं जो क्रोध तथा काम के रुद्र अवतार के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी ऊर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि महान योगी दुर्वासा ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश से झगड़ा किया था, और एक ब्राह्मण बालक ने महान राजा परीक्षित को शाप देकर रुद्र तत्व का प्रदर्शन किया। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, तो क्रुद्ध व्यक्ति अपने उच्च स्थल उन्नत स्थान से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, फिर अगर वो रुद्र तत्व को प्रकट करता है तो फिर वो अपने स्थान से नीचे गिर जाता है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो कभी अपने लिए क्रोध करता ही नहीं, क्योंकि उनका क्रोध ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पर बताया गया कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। उनका क्रोध, उनके अंदर एक ही इच्छा होती है कि भगवान की भक्ति होनी चाहिए, सब भगवान के पवित्र नाम का जप करें, सारे लोग जो है भगवान की शरण में आए। लेकिन फिर भी अगर उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो उनको कभी कभी क्रोध आ जाता है जब कोई अपराध करता है। तो जैसे हनुमान जी को क्रोध आ गया था रावण की लंका में देखकर, और उन्होंने देखा कि साक्षात माता सीता को उन्होंने पकड़ा, तो बहुत क्रोधित हो गए थे, पूरी लंका का विध्वंस कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो क्रोध बताया जा रहा है उसके लिए क्या बता रहे हैं कि जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, तो क्रुद्ध व्यापक व्यक्ति जो है अपने उच्च स्थल स्थान से नीचे गिर जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में इस प्रकार की गई है। येने रविन्दाक्ष विमुक्तिकामे वमुक्तिमानिना त्वयस्तभावा दविशुद्धबुद्धया आरोभयकृच्छेण परं पदं तथा पतन्त्यधुना धृतयुष्मद युष्मदंड क्रिया। यानी निर्विशेषवादी का सबसे दयनीय पतन उसके इस झूठे तथा तर्कहीन दावे के कारण होता है कि वह ब्रह्म से तदाकार है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल एक शुद्ध भक्त जो है वो ही क्रोध करके लोगों को भगवान की और भक्ति की ओर आकर्षित कर सकता है। जैसे गुरु महाराज होते हैं, उनको यह अधिकार होता है कि अपने शिष्यों को क्रोध करके भी शिक्षा दें। लेकिन जब तक कोई भक्त नहीं बनता तब तक तो वो जो भी क्रोध करेगा तो उसकी और सामने वाले की हानि ही होगी। लेकिन भक्तों में भी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, कि क्रोध को सदैव, क्रोध के वेग को सदैव रोकना चाहिए। क्योंकि भक्त वही होता है जो विनम्र होता है, जो अपने आप को दास मानता है, जो भगवान की सेवा करने में ही तत्पर रहता है। तो वो जानता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो इसलिए वो क्रोध में कभी भी कोई कार्य नहीं करता है। वो हमेशा विनम्रता के साथ हम्बली सबके साथ ना पेश आता। अगर उसके साथ कोई बुरा भी करता है तो भी वो क्रोध में कभी भी उसका प्रतिकार नहीं करता। जैसे हरिदास ठाकुर को कितना दुख आया, कितना कष्ट दिया गया, कितने उनको है ना सारी बाजारों में जाकर कोड़ों से मारा गया, लेकिन कहीं हमने पढ़ा कि हरिदास ठाकुर जो है वो क्रोध में आकर उनका ना कोड़ा खींच लेते हैं और बोलते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, अब देखो मेरा पावर किस तरह से, मैं भगवान से तुम लोगों की कंप्लेन करता हूँ। नहीं, भगवान का भक्त हमेशा शांत रहता। उसके ऊपर यदि कुछ गलत हो भी रहा है उसके साथ, प्रहलाद महाराज के साथ कितना गलत हो रहा था, कितना उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था और कितना उनकी परीक्षा ली जा रही थी, कितना टेस्टिंग हो रहा था, लेकिन कभी ये तो नहीं कहा भगवान से कि मैं तो तुम्हारा नाम ले रहा हूँ और तुम कभी भी है ना मेरे साथ कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। नहीं, भक्त के साथ कुछ भी होता है भक्त हमेशा सोचता है कि भगवान की कृपा है, चाहे वो कृपा के सूरत में मिलता है या दंड के सूरत में मिलता है। तो भक्त कभी भी क्रोध करता नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है जैसे अर्जुन को क्रोध करना पड़ा ताकि वो अधर्म का नाश करना भगवान की आज्ञा थी। तो कुछ स्पेशल भक्त होते हैं जिनके लिए स्पेशल आदेश होता है, लेकिन सामान्यतः भक्तों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी हैं, वो शिव जी को कहते हैं मन्युर्मनुर् महीनासो महांचेव ऋतध्वज उग्ररेता भव कालो वामदेवो धृतव्रतः मन्युर मनुर, मन्युर मतलब मनु, सॉरी मन्युः मतलब मनु, महीनसी अर्थात महीन महान, और महान का मतलब होता है शिव। नहीं ऐसा नहीं, ये सारे नाम हैं। अभी उनको एक नाम रुद्र दिया ना, दूसरे भी ये उनको बताया गया शिव जी को कि तुम्हारे 11 और भी नाम हैं, और वो कौन से हैं? मन्युर मनुर महीनसो महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव कालो वामदेवो धृतव्रत। तो ये सब नाम है, मन्यु मनु महीनसी महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव और धृतवत, ये सब अलग अलग रुद्रों के नाम हैं। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं, मन्यु मनु महीनस महान शिव ऋतुध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव तथा धृतव्रत। तो ये सब उनके नाम हैं, और अब आगे उनकी 11 पत्नियों के नाम बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पुत्र उत्पन्न किया है, उनके अलग अलग नाम भी रखे हैं, और उनके उसके उपरांत उनकी पत्नियों के नाम बता रहे हैं। वे कह रहे हैं धीर धृति रसलो माच नियुत सर्पीरिलाम्बिका इरावती स्वदा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते श्रियः। धी धृति रसला उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राणी, ये 11 रुद्राणियां हैं। रुद्रते स्त्रियः, हे रुद्र ये आपकी पत्नियां हैं। अनुवाद देखिए, हे रुद्र तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं धी धृति रसला उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती स्वधा तथा दीक्षा। तो उनकी पत्नियों के नाम भी बता दिए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं गृहाणै तानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिः सृज प्रजा भवी प्रजानामसि यत्पति। गृहाणि यानी स्वीकार करो, एतानि इन सारे नामानि यानी विभिन्न नामों को, स्थानि यानी स्थानों को, च भी सहयोषणा इन पत्नियों समेत, ए भी उनके द्वारा सृज यानी उत्पन्न करो। सृज का मतलब सृज प्रजा संतानों को। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो शिव जी को आदेश दे रहे हैं कि तुम पैदा हो गए ना, मैंने तुमको नाम भी दे दिया, तुमको रहने का स्थान भी दे दिया, और तुमको 11 पत्नियां भी दे दी। अब तुम क्या करो, ए भी सृज प्रजा, अभी तुम प्रजा को उत्पन्न करो, संतान को उत्पन्न करो, बहवी बड़े पैमाने पर बहुत बहुत संतान उत्पन्न करो। प्रजा नाम असि यत पति, प्रजा नाम अर्थात जीवों के असि तुम हो, यत क्यों के पति यानी स्वामी, अब सारे प्रजा के तुम स्वामी हो, मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो ना, मैंने तुमको जन्म भी दिया, मैंने तुमको नाम भी दिया, तुमको स्थान भी दिया, अब तुमको सारे जितने भी प्रजा है उसका सृजन करना, बड़े पैमाने बहुवी बहुत बहुत संतान उत्पन्न करो। अनुवाद देखिए, हे बालक अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। श्रीला प्रभुपाद की जय। अब श्रीला प्रभुपाद जी, हम सब संतानों को, जितनी भी संतानें हैं, पुत्र हैं, उनको एक बहुत ही सुंदर शिक्षा देंगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वास स्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया, है ना। उनके पुत्र थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने उनको स्थान भी दिया, नाम भी दिया और पत्नियों का भी चयन किया। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी हुई पत्नी को ही स्वीकार करे, जिस तरह वह अपने पिता द्वारा रखे गए नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। हम अपने पिता जो नाम देते हैं उसको तो हमने स्वीकार कर दिया, क्योंकि तब तो हमको पता ही नहीं होता है, हम बच्चे होते हैं। और उसके बाद जो संपत्ति है उसको तो बड़े होने के बाद भी खुशी से स्वीकार करते। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, माता पिता के द्वारा दिए गए पत्नी को भी स्वीकार करना चाहिए। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है। दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की। अब वैसे तो साधारणतया पुत्रों को पिता के आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महान कार्य यही है कि ब्रह्मचर्य में रहकर हम भगवान की सेवा करें। तो रुद्र जो है उनको तो ब्रह्मा जी ने पत्नियां दी कि भाई इनके द्वारा आपको है ना संतान उत्पन्न करके सृष्टि का सृजन करना है, लेकिन दूसरी ओर कौन है, चार कुमार, उन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की। उन्होंने बोला नहीं, हमको ना आपका नाम चाहिए, ना आपका स्थान चाहिए, ना आपकी पत्नियां चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। वो साधारण लोगों की तरह बच्चे पैदा कर करके जीना नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे, बहुत ही ऊंचा पद। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्चतर उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्र का पालन करने से इनकार कर सकता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही पर्सनल बात बता रहे हैं कि जिस तरह से पुत्र के सामने दो उद्देश्य होते हैं, अपने माता पिता की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, तो लेकिन उससे भी महान कार्य क्या है कि अपने जीवन में भगवान की भक्ति करके दूसरों तक भगवान की भक्ति का संदेश जो है उसको पहुंचाना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस तरह से पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उद्देश्य यदि उच्च है तो अस्वीकार कर सकते हैं। वैसे तो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया क्योंकि उसका उद्देश्य उच्च है। सनत कुमारों ने अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया क्योंकि उनका उच्च उद्देश्य है। उसी तरह से यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों के पालन करने से इनकार कर सकता है। अगर कभी ऐसा हो कि भक्ति का उद्देश्य हो, जगह जगह पर प्रचार का उद्देश्य हो, तो जिस तरह से पिता भगवान की खातिर अपने उद्देश्य को पूरा ना करे तो भी कोई हानि नहीं है, उसी तरह से यदि कोई पिता उच्च उद्देश्य के लिए अपनी संतान का पालन पोषण करने से इनकार करता है तो भी उसे कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत हाई क्लास का है। तो चतुष कुमार ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया कि भाई हमको तो मोक्ष धर्म में जाना है, हमको इस झंझट में नहीं पड़ना। लेकिन जैसे ही रुद्र जी को आदेश मिला कि इतनी सारी पत्नियां हैं, अब जाओ और बहुवही मतलब बहुत सारी प्रजा नाम यत्पति, सब बहुत सारी प्रजा का उत्पन्न करो, तो उसी समय शिव जी ने ये कार्यभार अपने ऊपर उठा लिया और रुद्र ने अपनी पत्नियों के की सहायता से बहुत बहुत संतान उत्पन्न की। लेकिन वो संतान सारी ऐसी ही थी जैसे कि वो स्वयं है, बोलते हैं ना, जैसा बाप वैसा बच्चा। फिर क्या होता है, यहाँ पर आगे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, इत्यादिष्ट स्व गुरुणा भगवान नील लोहित सत्वाकृति स्वभावेन ससज आत्म समा प्रजा, यानी अपने जैसा। शब्दार्थ देखिए, इत आदिष्ट स्व गुरुणा, इति मना इस प्रकार, आदिष्ट मना आदिश दिए जाने पर, स्व गुरुणा अपने ही गुरु द्वारा। ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं और साथ साथ में गुरु भी हैं, तो उन्होंने जब आदेश दिया, भगवान नील लोहित अत्यंत शक्तिशाली रुद्र जिनका रंग नीले तथा लाल का मिश्रित है, सत्व मना शक्ति आकृति अर्थात शारीरिक स्वरूप, स्वभावेन तथा अत्यंत उग्र स्वभाव से, ससर्ज आत्म समा प्रजा, ससर्ज मना उत्पन्न किया, आत्म समा यानी अपने ही तरह की प्रजा यानी संताने। अनुवाद, नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संताने उत्पन्न की, जो ब्रह्मा जी ने देखा, वाह भाई क्या तो सृष्टि की है। उसके उपरांत क्या हुआ, मैत्री मुनि कहते रुद्राणाम रुद्र श्रेष्ठानाम समन्तात् ग्रसता जगत् निशाम्यान् संख्ययुष्क्यशो यूथान् प्रजापतिर् अशंकत। रुद्राणाम रुद्र श्रेष्ठानाम, रुद्राणाम यानी रुद्र के पुत्रों का, रुद्र श्रेष्ठानाम यानी रुद्र द्वारा उत्पन्न सृष्टि किए गए, समन्तात् यानी एक साथ एकत्रित होकर, प्रसतात् प्रसता मतलब निगलते समय जगत। अब जब ये सब रुद्रगण उत्पन्न हो गए ना, एक साथ पूरे जगत को निगलने की शक्ति रखते थे, और निशाम्य सांख्य शो, निशाम्य मन उनके कार्यकलापों को देखकर, असंख्य शो असीम, यूथान यानी टोली या समूह, प्रजापतिर अशंकता, प्रजापति यानी जीवों के पिता कौन, ब्रह्मा जी, अशंकिता यानी भयभीत हो गया, उड़े बाप रे ऐसी संतान उत्पन्न की इसने जो सबको निगल लेगी, ऐसे संतान उत्पन्न करने से बेहतर है इसको करनी नहीं चाहिए। वो भयभीत हो गए, बोले ये तो सबको, मैं जैसी सृष्टि करूंगा ये सबको खा जाएंगे। इसलिए अनुवाद देखिए, रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्रित हुए तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थीं कि जीव के पिता ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए। रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी भी कष्टकारक ही हैं, कभी कभी वे रुद्र के लिए भी घातक बन जाते हैं। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की योजनाएं बनाते हैं, ऐसा है उनके भक्तों का स्वभाव। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी याद कराते हैं कि रुद्र के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जब किसी को भी निगल सकते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है शिव जी की भक्ति करके वरदान पाते हैं। जैसे वो भस्मासुर था, शिव जी की भक्ति की, भस्मासुर उसको शिव जी ने आशीर्वाद दिया, बोला क्या चाहिए, बोला बस मुझे एक आशीर्वाद दो कि जिसके सर पे हाथ रखूं तो मर जाए। और जैसे ही शिव जी ने तथास्तु बोला, बेचारा भोला है और क्रोध का अवतार है तो कुछ सोचता नहीं ज्यादा, फौरन से यस कर दिया तथास्तु। और देखा जब भस्मासुर ने शिव जी की पत्नी को, बोला मजा आ जाए अगर ये मिल जाए तो, बीच में रुकावट केवल शिवजी की हाथ रख के भस्म कर देता हूँ।
तो शिव जी के पीछे पड़ गया। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि शिव जी के भक्त जो है वो शिव जी को नाश करने पर तो ले लेते हैं, लेकिन शिव जी जो है वो एक ऐसा कार्य करते हैं कि वो भगवान से सदैव अधिक हृदय से प्रिय हैं। और वो क्या कार्य है आगे पता चलेगा। आगे जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे इन्होंने तो कितने खतरनाक संतान उत्पन्न की है, तो उसके उपरांत ब्रह्मा ने शिव जी को एक आदेश दिया, अलम प्रजा भी सृष्टा भीर ईदृशी भी सुरोत्तमा माया सह दहंती भीर दिशश्चा चक्षुर भीरुल भणे अलम प्रजा भी सृष्टा भी। अलम मतलब व्यर्थ है, प्रजा भी ऐसे जीवों द्वारा, सृष्टा भी उत्पन्न, ईदृशी भी यानी इस प्रकार के सुर उत्तम हे देवताओं के में सर्वश्रेष्ठ। रुद्र जी को ब्रह्मा जी कहते हैं आप तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसी भयानक प्रजा को उत्पन्न करना तो क्या अलम, अलम मतलब बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए माया सह दहंती भीर, माया मना मुझको सह सहित दहंती भी जलती हुई दिशा सारी दिशाएं चक्षु भी आंखों से उल बने यानी दहकती लपटे। ब्रह्मा जी शिव जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा हे देव श्रेष्ठ तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने पुत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। वो बोलते हैं कि अरे ये तो माया सह दहंती भीर, एक तो सारी जितनी भी दिशाएं हैं उन सबको अपनी लपकती हुई आग से विध्वंस करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे संतानों को कृपा करके मत उत्पन्न करो। तो समझो शिव जी पूछेंगे फिर मैं करूं क्या, आपने मुझे उत्पन्न किया क्यों, अगर मेरे से द्वारा संतान उत्पन्न नहीं करवानी है तो मैं करूं क्या। तभी ब्रह्मा जी आदेश देते हुए कहते हैं, तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वम इदं भवान्। तप आतिष्ठ भद्रम ते, तप अर्थात तपस्या, आतिष्ठ बैठिए, भद्रम शुभ, ते तुम्हारा, सर्वभूत सुखा वहम, सर्व मतलब समस्त, भूत माना जीव, सुखा वहम यानी सुख लाने वाला, तपस्यैव तपस्यैव यथा पूर्वम, तपस्या यानी तपस्या द्वारा, एव ही यथा जितना, पूर्वम यानी पहले, सृष्टा विश्वमिदं भवाम, सृष्टा यानी उत्पन्न करेगा, विश्वम यानी ब्रह्मांड, इदम यह भवान आप। तो ब्रह्मा जी शिव जी को कहते हैं कि बेटा ये अपनी वाली प्रजा को उत्पन्न करना बंद कर दो, ये तो सबका संहार कर देगी, आपको क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। अच्छा ये होगा कि आप तपस्या करो, इसी से समस्त जीवों का सर्वभूत सुखावहम कल्याण इसी से होगा। अनुवाद देखिए, हे पुत्र अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकता है, केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। कि तुम तपस्या करो, जब तपस्या करने के बाद तुम्हारे अंदर प्योरिटी आ जाएगी और ये रुद्र का जो भयानक तेज है वो समाप्त हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे, तपस्या एव यथा पूर्व सृष्टा विश्वमिदं भवान, फिर तुम करना अभी तो खाली तपस्या करो। अनुवाद। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याण प्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकता है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववर्त ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो।
श्रीला प्रभुपाद की।
श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः तीन देवता, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अथवा शिव उत्तरदायी हैं। रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की विधि में वे विनाश न करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाएं तथा प्रलय यानी संहार की प्रतीक्षा करें, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। बोला, अभी तुम आराम से बैठ कर तपस्या करो, फिर जब प्रलय आएगा फिर तुमको सेवा करनी है, तब तक तपस्या करो। आगे ब्रह्मा जी शिव जी को एक सुंदर और एक बहुत ही प्यारी शिक्षा देते हुए कहते हैं, तपसैवा परम ज्योतिर् भगवन्तम् अदुक्षजम् सर्वभूत गुवावासम् अञ्जसा विन्दते पुमा। तपस्सैव, तपस यानी तपस्या से, एव मन एकमात्र, निश्चय करके बता रहे, एकमात्र तपस्या से परम ज्योति, परम मतलब परम, ज्योति मना प्रकाश, ज्योति भगवंतम अदोक्षज, भगवंतम यानी भगवान को अदोक्षज, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, और सर्वभूत गुहा आवासम यानी सारे जीवों के हृदय में आवास करने वाले हैं, अंजसा पूर्णतया विंदते जान सकता है पुमान यानी मनुष्य। ब्रह्मा जी शिव जी से कहते हैं कि ये तपस्या ही तो है जो जीव को इस योग्य बना देती है कि वो उस भगवान को, जो कि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से जब वो अपने भक्तिमयी सेवा भगवान को प्रदान करते हैं, तभी भगवान उनको इस योग्य बनाते हैं कि वो भगवान के विषय में जान सकता है। इसलिए तपस्या करने से सारे जीवों के हृदय में जो भगवान वास कर रहे हैं, उनको आसानी से जाना जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। अनुवाद। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते, ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने के लिए सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। क्योंकि ब्रह्मा जी को जो पहला शब्द सुनाई दिया विश्व से, वो क्या था? तपः। और वो जानते थे कि तपस्या के द्वारा भगवान, जो कि अदोक्षज हैं, इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर हैं, उनके पास पहुंचा जा सकता है, उनको स्वरूप, उनके स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करें। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि आपको किसी शुद्ध वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। पहले प्रणिपात करो, जिसको समझते हो कि ये आपके मार्गदर्शन में एक सुंदर मार्ग का निर्देश करेंगे, या जिनको आप समझते हो कि वो एक वैष्णव है, तो सबसे पहला काम ये नहीं है कि हैंड रेस करके बोलो कि बताओ मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। नहीं, उसको प्रणिपात करो। तद विधि, क्या विधि है? प्रणिपात है। उसके बाद परिप्रश्न, प्रश्न करो, और उसके बाद उनके लिए कुछ करो, उनकी सेवा करो। परिप्रश्नेन सेवया, और फिर वो प्रसन्न होंगे तो तुमको ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे तुम साक्षात भगवान को भी प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो हैं, उन्होंने एक उपदेश दिया है, वो हम सबके लिए उदाहरण था कि भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों के द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते रहें, इस तरह रुद्र की संतानों से ऊब कर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने के भय से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। अतएव चित्रों में हम देखते हैं, यानी कि ये तो पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने बोला अपने पुत्र को कि जा बेटा अभी तुम तपस्या करो, तो वो शिव जी जैसे पुत्र हैं और फौरन से पिता की आज्ञा का पालन करके तपस्या करने चले गए। आजकल के जैसे बच्चे नहीं थे कि वो अपने माता पिता की कोई बात ही नहीं मानते, आजकल तो एक माला भी नहीं करते। पहले जमाने में देखो तपस्या करने के लिए बोला शिव जी ने और फौरन से चले गए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव चित्रों में हम देखते हैं, शिव जी जब भी फोटो खींचवाते तो कैसे लगते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यान अवस्थ रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जाती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण ना करते हुए संहार कार्य बंद कर दे, जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही हो, तो तब सबको यही बताया जाता है कि शांति के साथ तपस्या करनी चाहिए। और जब शिव जी को ब्रह्मा जी ने तपस्या करने का आदेश दिया, उसके बाद मैत्रेय मुनि बताते हैं, एवम आत्मा भुवादिष्ठ परिक्रम्य गिरां पतिं भाणमित्यम् उमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् एवं एवं मना इस प्रकार। मैत्रेय उवाच यानी मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार आत्मभुवा यानी ब्रह्मा द्वारा आदिष्ट इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर परिक्रम्य गिरम पतिम, सबसे पहले तो शिव जी ने परिक्रमा की यानी प्रदक्षिणा की, किसकी? गिरम यानी वेदों के, पतिम यानी स्वामी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जो हैं वो समस्त वेदों के स्वामी हैं, इसलिए उनकी आज्ञा को श्रोधारी करके उन्होंने उनकी परिक्रमा की। बाढ़म यानी उचित, इति इस प्रकार, अमुम यानी ब्रह्मा को आमंत्रित इस प्रकार संबोधित करते हुए, विवेश प्रविष्ट हुए तपसे यानी तपस्या के लिए वनम यानी वन में। अनुवाद देखिए, श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की, हां कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। तो इस तरह से पहले जो चार पुत्र थे उन्होंने तो मना किया कि भाई हम खुद से भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, मोक्ष के मार्ग के मोक्ष के मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति करेंगे। और दूसरी संतान पैदा हुई वो भी रुद्र थी, जिनकी संतानें इतनी खतरनाक थी कि पूरी सृष्टि को निगल जाती, इसलिए उनको स्वयं ही ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि बेटा आप ये सृष्टि कार्य छोड़ दीजिए और तपस्या करने जाए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि शिव जी तो ब्रह्मा जी को परिक्रमा करके प्रदक्षिणा करके तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन ब्रह्मा को तो आदेश था ना सृष्टि को पालन और सृजन करने का। तो उसके बाद ब्रह्मा जी क्या करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।